स्तुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम् पावमानी द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशु कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम् मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत जान है सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है है परम सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है उसे अनादि ब्रह्म को श्रद्धा सहित प्रणाम है उसे अनादि ब्रह्म को श्रद्धा सहित प्रणाम है भक्ति में मन परहित में तन भक्ति में मन परहित में तन जब तेरा हो जाएगा भक्ति में मन परहित में तन जब तेरा हो जाएगा तो तुझे खुद ही के भीतर तो तुझे खुद ही के भीतर परमात्मा मिल जाएगा भक्ति में मन परहित में तन जब तेरा हो जिंदगी का क्या भरोसा आज है कल को नहीं जिंदगी का क्या भरोसा आज है कल को नहीं मौत सर पर जब विराजे हो सके तब कुछ नहीं वक्त रहते खोल आंखें वक्त रहते खोल आंखें वरना फिर पछताएगा भक्ति में मन परहित में तन जब तेरा हो जाएगा साथ देने जो चले थे भूल ही सब जाएंगे साथ देने जो चले थे भूल ही सब जाएंगे तेरे अपने घर चिता में लौट घर को आएंगे पाला था जो तन जतन से पाला था जो तन जतन से खाक में मिल जाएगा भक्ति में मन परहित में तन जब तेरा हो जाएगा छल कपट और पाप से ही वास्ता तेरा रहा। छल कपट और पाप से ही वास्ता तेरा रहा। दीन दुखियों निर्बलों को दुख ही दुख देता रहा। सोच ले जो जैसा बोता, सोच ले जो जैसा बोता, वैसा ही वो पाएगा। भक्ति में मन, परहित में तन, जब तेरा हो जाएगा। श्रेष्ठ जीवन मोक्ष साधन तुझको वेदों से मिले। श्रेष्ठ जीवन मोक्ष साधन तुझको वेदों से मिले। गोविंद तू इस पथ चले तो फूल जीवन में खिले। वेद वाणी को न तजना, वेद वाणी को न तजना, वरना फिर पछताएगा। भक्ति में मन, परहित में तन, जब तेरा हो जाएगा तो तुझे खुद ही के भीतर, तो तुझे खुद ही के भीतर परमात्मा मिल जाएगा। भक्ति में मन, परहित में तन, जब तेरा हो जाएगा, जब तेरा हो जाएगा।
भद्र पुरुषों, सम्मान के योग्य मातृशक्ति, परमपिता परमात्मा की बड़ी असीम कृपा है जो ये सुंदर शरीर उस परमात्मा ने हमें दिया है। संसार में जितनी भी योनियां हैं, सबसे श्रेष्ठ ये मानव का चोला उस परमपिता परमात्मा ने दिया है। इस मानव के चोले की प्रशंसा करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पवित्र रामायण के अंदर बहुत सुंदर भावों में एक चौपाई के द्वारा कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत सुंदर कहना है, रामायण में एक प्रसंग आता है काक भसुंड गरुण संवाद। उसमें अनेकों प्रश्न हैं, अनेकों उत्तर हैं, और ये काक भसुंड गरुण, इस नाम के आप पक्षी मत समझ लेना, इस नाम के ऋषि होते थे। पक्षी भी मान सकते हैं, उड़ने वाले पक्षी नहीं, जैसे आज भी कुछ पक्षी हैं। आज भी किसी से पूछो, भाई आप किसके पक्षी हो, वो कहते हैं हम तो भारतीय जनता पार्टी के पक्षी हैं और कांग्रेस के भी पक्षी हैं। क्या वो पक्षी बन गए? नहीं, पक्षी नहीं बने, केवल इस तरह के पक्षी थे उस समय भी, रामायण काल में भी, मानो वो राम जी के पक्षी थे और रावण के भी पक्षी थे। वो विद्वान आपस में चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करते करते एक विद्वान ने प्रश्न किया। वो प्रश्न को गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी बहुत सुंदर एक चौपाई में लिखते हैं। तुलसीदास जी के भाव हैं, पहले प्रश्न ने भाव दर्शाते हुए तुलसीदास जी कहते हैं,
प्रथम ही कहूं नाथ मति धीरा, सबसे दुर्लभ कवन शरीरा। प्रथम ही कहूं नाथ मति धीरा, सबसे दुर्लभ कवन शरीरा। सबसे
पहले विद्वान ने कहा कि संसार में मिलना जो बड़ा मुश्किल है, जन्म जन्म के शुभ कर्मों के बाद में मिलता है, तो कौन सा चोला है? तो दूसरे विद्वान ने उत्तर दिया, उस उत्तर को भी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं,
कि नरितन सम, नरितन सम, नरितन सम नहीं कौन विदेही, जीव चराचरी जाचत जेही, जीव चराचरी जाचत जेही।
कहा कि नर्तन चोला ही सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें सोचने विचारने की शक्ति है। ये किसी कार्य को करने से पहले विचार करता है कि अच्छा है कि बुरा है, मैं इस कार्य को कर रहा हूं इसमें पाप है कि पुण्य है। पश्यति से पशु, जो केवल देख करके चलता है, देख करके करता है, वो पशु होता है। मनुष्य वही है जो मननशील होता है, मनन करके विचार करके कार्य करता है। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने इसीलिए कहा कि हम मनुष्य हैं, संसार में सबसे श्रेष्ठ मानव का चोला हमें परमात्मा ने दिया है, तो इसको सार्थक बनाए। सार्थक कैसे बन सकेगा? तो ऋषि ने हमें इस जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए कुछ माध्यम दिया है, और माध्यम है वेदोक्त माध्यम। हम अपना जीवन कैसा बनाए जिससे संसार में आकर के जीवन सार्थक हो, जाने के बाद भी लोग हमें श्रद्धा से हमारे नाम को लेकर के नतमस्तक हो जाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, योगी राज भगवान कृष्ण, उनके नाम को आज श्रद्धा से लोग इसीलिए लेते हैं कि उनके जीवन में कुछ अच्छाइयां थी, वो दूसरों के लिए अच्छे भाव लेकर के अपने जीवन में गए। इसीलिए हम भी अपने जीवन को कैसा बनाएं, सवेरे शाम परमात्मा से मांगें, प्रार्थना करें, तो बस एक ही चीज मांगें, धन दौलत मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो तो पुरुषार्थ से हमें अवश्य मिले। मांगना है तो प्रभु से मांगे, जैसे एक भक्त प्रभु की भक्ति में बैठा है, भक्ति करते करते कहता है, प्रभु मैं आपसे क्या मांगूं, वो मांगता हूं जो संसार में और कोई नहीं दे सकता है, भगवान ये मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान ये मेरा जीवन संसार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए, उत्तम स्वभाव मेरा, दुश्मन का मन रिझाए वो देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए, प्रभु मेरा जीवन ऐसा हो जाए, इस जीवन से कभी किसी का अहित ना हो, हमेशा दूसरों के प्रति इसमें अच्छे भाव रहे। और यही भावनाओं को कायम रखने के लिए ऋषि ने कहा है कि इन भावनाओं को जिंदा अगर रखना है तो अपने जीवन में यज्ञ अपनाओ, और एक नहीं पंचमाज विधि ऋषि ने हमें दी। वैसे तो हमारे विद्वान कहते हैं कि जिस कार्य के करने में भय लज्जा शंका ना हो और दूसरों के हितार्थ हो, वो सभी कार्य यज्ञ होते हैं। हमने किसी प्यासे को पानी पिला दिया, वो भी हमारा एक यज्ञ हो गया। हमने किसी भूखे को खाना खिला दिया, वो भी हमारा एक यज्ञ हो गया। अगर हमने किसी भटके हुए राही को सही रास्ता दिखला दिया, वो भी हमारा एक यज्ञ हो गया है। इसीलिए ऋषि ने पंचमाज विधि हमें दी है, विचार करें उन भावों को और अपने जीवन को सार्थक बनाएं, संसार में आने का उद्देश्य जाने। क्या भाव हैं वो ऋषि के, तो आओ विचार करें उन भावों पर।
ऋषि दयानंद ने समझाया पांच यजों का करना, ऋषि दयानंद ने समझाया पांच यजों का करना, दीन दुखी और निर्बल जनों के कष्ट हमेशा हरना, हो हो। ऋषि दयानंद ने समझाया पांच यजों का करना, दीन दुखी और निर्बल जनों के कष्ट हमेशा हरना, हो यज्ञ है प्रथम करो मिल सब प्राणी, जिससे होगी शुद्धि हमारी मनवाणी, ब्रह्म यज्ञ है प्रथम करो मिल सब प्राणी, जिससे होगी शुद्धि हमारी मनवाणी, प्रभु का मुख्य नाम है ओ क्या भारत अमरीका रो, सब में रमा हुआ है ईश्वर ध्यान हमेशा धरना हो। ऋषि दयानंद ने समझाया पांच यजों का करना, दीन दुखी और निर्बल जनों के कष्ट हमेशा हरना हो।
सबसे पहले ऋषि ने हमें समझाया कि हम ब्रह्म यज्ञ करें, सवेरे शाम उस परम पिता परमात्मा की उपासना करें जिसका मुख्य नाम ओम है। एक व्यक्ति ने कहा जी ओम ही नाम क्यों लें, उसका नाम तो महेश भी है, उसका नाम तो शिव भी है, उसका नाम तो राम भी है, हम राम ही राम क्यों ना लें। बात तो ठीक है लेकिन एक विचार करके देखें, राम नाम हम ले तो सकते हैं लेकिन राम का अर्थ है जो सब में रमण करता है, सब में वास करता है। लेकिन राम नाम का निषेध क्यों किया है, वो इसलिए कि ओम नाम परमात्मा का इसलिए मुख्य बताते हैं कि उस ओम नाम को हर कोई बोल सकता है, राम नाम को गूंगा नहीं बोल सकता है। एक ओम ही शब्द ऐसा है जिसे गूंगा भी बोल सकता है, प्रभु तो सबका है इसलिए उसी नाम को पुकारो जिस नाम से सब उच्चारण उस प्रभु का कर सके। श्रद्धा से हृदय से लगन से प्रभु की भक्ति करें और पहले प्रभु की पहचान कर लें परमात्मा कैसा है। आज संसार में कोई कमी नहीं है, जिधर से जाओ उधर से एक ही आवाज आती है मैं भगवान हूं मैं भगवान हूं मैं भगवान हूं। कोई कहता परमात्मा साकार है, कोई कहता परमात्मा निराकार है, कोई कहता परमात्मा है ही नहीं, किसकी भक्ति करें। तो इसे उलझन को सुलझा करके मेरी श्री स्वामी दयानंद जी महाराज ने हमारे सामने रखा है, वो परमात्मा कैसा है, कैसे उसकी भक्ति करें। हाथरस के काका जी कवि हुए, उन्होंने कवित बहुत सुंदर परमात्मा के बारे में कहा, हास्य के कवि थे, उसी अपनी भाषा में वो कहते हैं कि ज्ञानी ध्यानी थक गए करते करते तर्क, ज्ञानी ध्यानी थक गए करते करते तर्क, निराकार साकार से समझ न आया फर्क, निराकार साकार में समझ न आया फर्क, समझ न आया फर्क, भांग का गोला खाया तब सारी बातों का निष्कर्ष सामने आया। कहे काका जो रखे कार साकार वही है और निराकार वो जिसके घर में कार नहीं। वाकई में जो अपने को भगवान कहते हैं उनके पास में सारे ऐश के समान भी नहीं, लेकिन जो परमपिता परमात्मा हम सबका रक्षक है, हम सबका पालक है, उसे इन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है। उस सर्वशक्तिमान की हम भक्ति करें श्रद्धा से मन से, और कैसा वो परमात्मा है तो बड़े सुंदर भाव कवि ने अपने भजन में दर्शाए हैं, उस प्रभु को पहले जाने बाद में माने। कवि कहता है परमात्मा कैसा है, वो कहां रहता है, वो क्या करता है, इन भावों को आओ इस भजन के माध्यम से विचार करें।
वो सबके दिल में रहता है, दिल में ही पाओगे, घर बाहर जाओगे तो धोखा खाओगे। वो सबके दिल में रहता है, दिल में ही पाओगे, घर बाहर जाओगे तो धोखा खाओगे। वो सबके दिल में रहता है, सृष्टि को रचाता है और खुद ही चलाता है, सृष्टि को रचाता है और खुद ही चलाता है, दुनिया का रक्षक है और सबका दाता है, उसकी जो माया है कण कण में समाया है। तुम सब अपने दिल को फिर कब समझाओगे, वो सबके दिल में, सबके दिल में रहता है, दिल में ही पाओगे, घर बाहर जाओगे तो धोखा खाओगे। सबके दिल में रहता है, होठों पर जाने से मल मल कर नहाने से, तीर्थों पर जाने से मल मल कर नहाने से, फल फूल चढ़ाने में खुद को भटकाने में, ये जीवन बीत गया कुछ भी न हाथ लगा, तब तालियां मल मल कर रोते रह जाओगे। वो सबके दिल में, वो सबके दिल में रहता है, दिल में ही पाओगे। घर बाहर जाओगे तो धोखा खाओगे, वो सबके दिल में रहता है। प्राणी है सबका मन मंदिर है, जितने भी प्राणी है सबका मन मंदिर है, ईश्वर हर प्राणी के मंदिर के अंदर है, ईश्वर हर प्राणी के मंदिर के अंदर है, उसकी जो सेवा है फल मीठा मेवा है, अनजान पथिक समझो वरना पछताओगे। वो सबके दिल में, वो सबके दिल में रहता है, दिल में ही पाओगे। घर बाहर जाओगे तो धोखा खाओगे, वो सबके दिल में रहता है।
परमपिता परमात्मा हमारे दिल में वास करता है, और किसी शायर ने तो बहुत सुंदर कहा है, ऐ इंसान जिसे तू ढूंढता है वह तुझसे जुदा नहीं है, ऐ इंसान जिसे तू ढूंढता है वह तुझसे जुदा नहीं है, अगर तुझसे जुदा है तो समझ ले खुदा नहीं, अगर वो तुझसे अलग है तो खुदा परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापक है, कण कण में वास करता है। उस प्रभु की श्रद्धा से मन से हम भक्ति करें, सवेरे शाम बैठ करके ब्रह्म यज्ञ करें, मन से की हुई भक्ति ही आनंद देती है, दुआ मंजूर होती है, दुआ मंजूर होती है अगर वो दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है वो बड़ी मुश्किल से होती है। हमारा मन उस प्रभु की भक्ति में लग जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद है। ये मन हमारा दो कार्य करता है, अच्छे भी करता है बुरे भी करता है, मन हमारा मोक्ष का कारण भी है और ये मन बंधन का कारण भी है, मन हमें ऊंचाई पर भी ले जाता है और मन हमें मिट्टी में भी मिला देता है। तभी तो कवि प्रकाश जी ने इस मन के लिए बड़े सुंदर कवित में कहा है कि मन साना जग में प्रकाश कोई सच्चा मीत, मन साना जग में प्रकाश कोई सच्चा मीत, मन साना और कोई शत्रु हुड़दंगा है, मन से ही शांति गीत, मन से ही रीत प्रीत, मन से ही कलह कपट देश दंगा है, और मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही मिलाता ईश, मन ही तो डाले शुभ काम में अड़ंगा है, और मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। ये हमारा मन पवित्र हो जाए, इस मन में दूसरों के प्रति अच्छे भाव हो जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद रहे। तभी तो इस मन के लिए सोते समय परमात्मा से प्रार्थना करने की बात कही, सोते समय हमारा ये मन बड़ा विचलित रहे उससे बचने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। वेद भगवान ने संदेश हमें दिया है कि यज्ञाग्रतो दूर मुदैति देवम तदुसुप्तस्य तथैव इति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे प्रभु, हमारा मन ये इधर उधर ना भाग जाए, इधर उधर ना भटक जाए, और इस मन को अगर हम मार लें तो समझो जीवन में आनंद ही आनंद है। बड़े सुंदर कवि के भाव हैं, कुछ पंक्तियों में हम विचार करें।
मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आया कहाँ से कौन तू, जाएगा कहाँ, आया कहाँ से कौन तू, जाएगा कहाँ, इतना जरा विचार ले, इतना जरा विचार ले, बस हो गया भजन, इतना जरा विचार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले। दुनिया तुझे बुरा कहे तू शेर बन के जी, दुनिया तुझे बुरा कहे तू शेर बन के जी, वाणी का स्वर सुधार ले, वाणी का स्वर सुधार ले, बस हो गया भजन, वाणी का स्वर सुधार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया। भाव है कि इस मन की तरंग को मार ले, अपनी वाणी के स्वर को सुधार ले, वाणी से सत्य बोले, मीठा बोले तो सब पराये भी अपने हो जाते हैं। बहुत सुंदर कहा है कि कौवा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, इस मीठी बोली कारणे जग अपना कर ले। मीठी बोली के कारण ही संसार में पराये भी अपने होते हैं और इसी बोली के कारण अपने भी पराये हो जाते हैं। महाभारत में द्रौपदी ने दुर्योधन को यही तो कहा था कि अंधों के तो अंधे ही पैदा होते हैं, बस इन्हीं भावों को, इन्हीं वाणी को लेकर के पूरा महाभारत हो गया। इसीलिए वाणी में मिठास लाएं, श्रद्धा से मन से प्रभु की भक्ति करें तो जीवन में आनंद ही आनंद रहे। इस मन से क्यों ही भक्ति जीवन में आनंद देती है। श्रद्धा से सवेरे शाम हम ब्रह्म यज्ञ करें, परमात्मा की उपासना करें और अपने जीवन को भक्ति में लगाएं। हमारा जीवन अमूल्य जीवन है, अपने जीवन को भक्ति में लगाएं। और दूसरा यज्ञ ऋषि ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, जिस पर हम विचार करें। परमपिता परमात्मा की भक्ति के साथ साथ हमारा जीवन एक दूसरे यज्ञ से भी ओतप्रोत होना चाहिए। और दूसरा यज्ञ ऋषि ने हमें समझाया,
देव यज्ञ तो श्रेष्ठ कर्म कहलाता है, चींटी से हाथी तक को सुख पहुंचाता है। देव यज्ञ तो श्रेष्ठ कर्म कहलाता है, चींटी से हाथी तक को सुख पहुंचाता है। न गूंजे स्वास जहां आसमां, घर रहता शमशान समान। मान करो विद्वानों का हर समय पाप से डरना, ऋषि दयानंद ने समझाया पांच यजों का करना। दीन दुखी और निर्बल जनों के कष्ट हमेशा हरना, हो
यज्ञ में ऋषि ने कहा कि हम सवेरे शाम देव यज्ञ करें, अग्निहोत्र करें। जो हमारे जड़ देवता हैं वो इस यज्ञ से, हवन से प्रसन्न होते हैं, उनकी पूजा होती है। पांच हमारे जड़ देवता हैं, पांच हमारे चेतन देवता हैं। अगर हमें जड़ देवताओं की पूजा करनी है, जो हमारे पांच जड़ देवता हैं अग्नि वायु आकाश जल आदि, तो इस यज्ञ के द्वारा शुद्ध करें। एक पापी होता है, एक उससे भी बड़ा पापी होता है, एक महापापी होता है। कहते हैं पहला पापी तो वो होता है जो भोजन में जहर मिलाता है, क्योंकि भोजन को थोड़ा भोजन बना, जितने व्यक्ति ने खाया उनको नुकसान हुआ। उससे बड़ा पापी होता है जो पानी में जहर मिलाता है, कुएं में जहर डाल दिया, जितने व्यक्तियों ने पिया
उतने मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन सबसे बड़ा पापी वो होता है जिसे महापापी कहते हैं, जो वायु में जहर मिलाता है। वायु सारे संसार में सब जगह घूमती है, सब जगह जाती है, जहां जहां जहरीली वायु जाएगी वहां वहां सब मनुष्यों को, सब पशुओं को दुखी करे। इसीलिए हम उस वायु को शुद्ध करने के लिए जितनी वायु अपने शरीर से हम दुर्गंध फैला करके दूषित करते हैं, उसको सुगंधित करने के लिए अपने जीवन को यज्ञ में जीवन बनाएं। कुछ व्यक्ति कहते हैं, जी यज्ञ करने का काम तो आर्य समाजियों का है, हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के भक्त हैं, योगी राज भगवान कृष्ण के भक्त हैं, हम हवन को करें, हम यज्ञ क्यों करें, हम तो राम का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं। लेकिन विचार करके देखें, अगर सच्चे अर्थों में हम राम जी के भक्त बनना चाहते हैं तो हमें तो यज्ञ हवन बड़ा आवश्यक है, बड़ा जरूरी है। क्योंकि महाराजा दशरथ को अगर चार पुत्रों की प्राप्ति हुई तो इस यज्ञ के द्वारा हुई। महाराजा दशरथ तो निराश हो गए थे, बैठे बैठे विचार करते थे कि महाराज तू पापी हो गया है, वेदों के विरुद्ध चलकर के तीन तीन शादियां की और फिर भी निसंतान रहा, जिसकी इच्छा के लिए शादी तीन की वो इच्छा फिर भी पूरी नहीं हुई, इस राजकाज को मिटाने वाला तू ही हो गया है, रघुकुल वंश को नष्ट करने वाला महाराजा दशरथ अपने को दुखी ठहराता है। लेकिन मुनि वशिष्ठ देखते हैं, राजन क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तुम निराश हो। निराश तो नास्तिक होते हैं, जिन्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं होता, जिन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं होता है। तुम तो आस्तिक हो। महाराज दशरथ ने सर झुका करके कहा, महाराज आज मैं निराश इसलिए हूं कि शरीर बुढ़ापे की तरफ है, चौथापन आने वाला है, फिर भी मैं निसंतान हूं, रघुकुल वंश को नष्ट करने वाला मैं ही पापी हो गया। एक भी संतान होती तो ये रघुकुल वंश चलता रहता है, रघुकुल चलता रहता। तो मुनि वशिष्ठ ने हंसकर के कहा, मुनिराज फिर आप निराश क्यों होते हैं, आप तो ईश्वरवादी हैं, आप तो परमात्मा पर विश्वास करते हैं और आपकी तो संस्कृति इतनी महान है, यज्ञ संस्कृति है, यज्ञ के द्वारा सब शुभ कामनाएं पूर्ण होती हैं। और मुनि वशिष्ठ ने समझाया, बड़े सुंदर कवि के भाव हैं, मुनि वशिष्ठ समझाते हैं, राजन
श्रीमान आप यज्ञ का, श्रीमान आप यज्ञ का सामान कीजिए, श्रीमान आप यज्ञ का सामान कीजिए, नाहक ने अपने दिल को, नाहक ने अपने दिल को परेशान कीजिए, श्रीमान आप यज्ञ का, श्रीमान आप यज्ञ का सामान कीजिए, नाहक ने अपने दिल को। श्रृंगी जीवा कई है एक माहिरे जवान, श्रृंगी जीवा कई है एक माहिरे जवान, उनको बुला के यज्ञ का, उनको बुला के यज्ञ का परिधान कीजिए, नाहक ने अपने दिल को परेशान कीजिए, श्रीमान आप यज्ञ का सामान कीजिए, श्रीमान आप यज्ञ का। शुभ कर्म दान पुण्य से बढ़कर नहीं कोई, शुभ कर्म दान पुण्य से बढ़कर नहीं कोई, दिल खोल के धन दीजिए, दिल खोल के धन दीजिए और दान कीजिए, नाहक ने अपने दिल को परेशान कीजिए, श्रीमान आप यज्ञ का सामान कीजिए, श्रीमान आप यज्ञ का।
और इतना कुछ करने के बाद फिर तुम्हें क्या करना है, अपने शुभ कार्य करने के बाद में फिर बस एक ही विश्वास रखो,
उस सर्वशक्तिमान दयालु जगत पिता, उस सर्वशक्तिमान
दयालु जगत पिता परमात्मा का अपने दिल में, परमात्मा का अपने दिल में ध्यान कीजिए। नाहक ने अपने दिल को परेशान कीजिए। श्रीमान आप यज का सामान कीजिए। श्रीमान आप यज का।
मुनि वशिष्ठ कहते हैं, राजन आपकी यज्ञ संस्कृति है और इस समय मेरी नजरों में वेदों का एक ही प्रकांड पंडित है जो अंग देश में रहता है, श्रृंग ऋषि जी महाराज। और वाकई में सच्चे अर्थों में आर्य समाज राम जी के सच्चे स्वरूप को आपके सामने बताना चाहता है। जो कहते हैं हम राम जी के भक्त हैं, उनमें से 100 में से 50 व्यक्तियों को यह पता होगा कि महाराजा दशरथ को पुत्रेष्ट यज्ञ के द्वारा जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार पुत्रों की प्राप्ति हुई, उस यज्ञ को किसने कराया। अगर यह भी पता होगा कि उस यज्ञ को श्रृंग ऋषि जी महाराज ने कराया था, लेकिन ये तो 100 में से 10 ही व्यक्ति को पता नहीं होगा कि श्रृंग ऋषि जी महाराज ने महाराजा दशरथ का जो पुत्रेष्ट यज्ञ कराया था वो कौन से वेद के मंत्रों के द्वारा कराया था। श्रृंगी ऋषि जी महाराज ने इस यथा समय आकर के महाराजा दशरथ के यज्ञ में ब्रह्मा पद को सुशोभित करके अथर्व वेद के सैस्वर गान मंत्रों का पाठ करके पुत्रेष्ट यज्ञ कराया, तब महाराजा दशरथ को चार पुत्रों की प्राप्ति हुई। अब बताओ अगर हम अपने घरों में यज्ञ हवन ना करें तो फिर हम कैसे राम जी के भक्त हो सकते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, जी ये तो बात हम मानने वाले नहीं, क्योंकि यज्ञ तो महाराजा दशरथ ने किया था, राम जी ने थोड़ा ही किया था, हम तो राम के भक्त हैं, हम क्यों यज्ञ करें। लेकिन राम जी के जीवन का भी प्रसंग एक बहुत सुंदर आता है, जिससे मैं मुनि विश्वामित्र दक्षिण दिशा में जाकर के यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे, तो राक्षसों ने आकर उस यज्ञ में मांस और हड्डियां डाली, खून डाला, घी सामग्री को इधर उधर कर दिया। मुनि विश्वामित्र ने पहले तो बड़े प्यार से समझाया कि देखो ये श्रेष्ठतम कर्म है, इसमें तुम ऐसे विघ्न मत डालो। लेकिन राक्षस वही होते हैं जो समझाने से ना समझ सके। बहुत सुंदर किसी कवि ने कहा है कि जो गलती कर ही नहीं सकता उसे भगवान कहते हैं, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती करके अड़ जाए उसे शैतान कहते हैं, और जो गलती पर करे गलती उसे हैवान कहते हैं। और इससे भी आगे किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जो गलती पर करे गलती पिटे, फिर करे गलती फिर पिटे, फिर करे गलती फिर पिटे, फिर करे गलती फिर पिटे, फिर करे गलती, उसे पाकिस्तान कहते हैं। वाकई में जो गलती पर गलती करता जाए उसको क्या कहे। मुनि विश्वामित्र विचार करते हैं कि ये तो राक्षस हैं, समझाने से नहीं समझेंगे, अब तो इनके साथ में यथा योग सत्कार करना पड़ेगा। जैसा कि महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज के साथी नियम में कहा है कि सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार और यथा योग बर्ताव करो, अब तो इनके साथ में यथा योग बर्ताव करेगा। और ऐसा विचार करके वो कहां आए, वो महाराजा दशरथ के दरबार में आए। और महाराजा दशरथ के दरबार में जब आए और महाराजा दशरथ को पता चला कि मुनि विश्वामित्र आए हैं, एकदम से सिंहासन छोड़ करके नंगे पैरों भागे हुए मुनि विश्वामित्र के सामने आ गए और हाथ जोड़ करके कहते हैं, महाराज आज तो मेरे धन्य भाग हैं, आप मेरी नगरी में आए हैं, मेरे महलों में आए हैं। और मुनि विश्वामित्र को देख करके महाराजा दशरथ हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं।
नृप ने कहा झुका सर, सेवा कहो मुनिवर, क्या आपकी करूं मैं, क्या आपकी करूं मैं। नृप ने कहा झुका सर, सेवा कहो मुनिवर, क्या आप की करूं मैं, क्या आप की करूं मैं। आज मैं खुश जैसे कोई प्यासा अमृत को पाने से, आज मैं खुश जैसे कोई प्यासा अमृत को पाने से। सूखी हरी खेती होती बरसात बरस जाने से, यहाँ पैर जो दिए धर सेवा कहो मुनिवर, क्या आप की करूँ मैं, क्या आप की करूँ मैं। नृप ने कहा झुका सर,
महाराजा दशरथ ने हाथ जोड़ करके सर झुका करके कहा, महाराज मेरे धन्य भाग हैं आप, मैं क्या सेवा करूं। देखो पहले राजा ऋषि मुनियों का कितना सम्मान करते थे, और आज के राजा सम्मान करेंगे, आज का तो राज ही धर्म निरपेक्ष राज है जिसमें धर्म नहीं है। आप विचार करके देखो, जिस मकान के अंदर प्रकाश नहीं होता तो क्या होता है, अंधेरा ही अंधेरा होता है। विपरीत चीज अवश्य होती है। अगर आज के राज्य में धर्म नहीं है तो ये तो सीधे से सादा व्यक्ति भी समझ जाएगा कि अगर धर्म नहीं है तो फिर अधर्म है। जहां अधर्म है तो फिर न्याय कैसे हो, जहां न्याय नहीं होगा तो फिर संसार में सुख और शांति आनंद कैसे रहेगा, फिर भाई भाई प्रेम और प्यार से कैसे रहेंगे। महाराजा दशरथ सिंहासन छोड़कर के आ गए मुनि विश्वामित्र के स्वागत में, और आज के महाराज, आज के राजा, आज के नेता सिंहासन छोड़कर के नहीं आते हैं, वो तो धर्म निरपेक्ष राज है। आज के नेता तो बस उसी से खुश हैं। बहुत सुंदर किसी कवि ने कहा है कि आज के राज में क्या है, पहले अच्छों का सम्मान होता था, आज चापलूसों का सम्मान होता है। कहते हैं राजनीति की राह में चमचों की भरमार, जो ताजा मक्खन मले उसका बेड़ा पार, उसका बेड़ा पार जो तिनका तक न तोड़े, मगर चापलूसी में सबको पीछे छोड़े। कहे वीर कवि हृदय इतने संकुचित हैं, प्रधानमंत्री भी उनसे ही प्रभावित है। आज चापलूसों का जमाना है और उसी के कारण धोखा खा जाते हैं। पहले राजा देखो, पहले प्रधानमंत्री थे चाणक्य, टूटी हुई झोपड़ी में रहकर के पूरे राज को चलाते थे, राज में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता था और दरवाजा 24 घंटे हर व्यक्ति के लिए खुला होता था। और आज टूटी हुई झोपड़ी की बात है, आज की अगर हमारे नेता चले तो गाड़ी भी बुलेट प्रूफ होती है, जैकेट भी बुलेट प्रूफ पहननी पड़ती है, जहां जाए वहां 4 सिपाही 10 सिपाही 10 गाड़ियां साथ में जाती हैं, तो खतरा है चारों तरफ से, कहीं कोई आतंकवादी आकर के गोली ना मारते। ये क्यों होता है, ये तभी होता है जब हम धर्म के रास्ते से विमुख हो जाते हैं, धर्म को छोड़ देते हैं। पहले राजा कोई अपनी प्रजा से डरते थे, बल्कि प्रजा के बीच में जाकर के उनका हाल चाल पूछते थे। महाराजा दशरथ धार्मिक स्वभाव के, धार्मिक भावों के, अपने आर्यवर्त देश के रहने वाले मुनि विश्वामित्र से कहते हैं, राजन मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो मुनि विश्वामित्र कहते हैं, हां महाराज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। तो महाराजा दशरथ कहते हैं, मांगने वाली बात मत कहो, आप तो ये कहो मैं आपकी सेवा में क्या लाऊं, सारा राजपाट तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, प्रभु बोलो तो सही। तो मुनि विश्वामित्र कहते हैं, राजन तो सुनो,
मैं यज्ञ जिस समय करता हूं दुख मुझको निश्चर देते हैं, दुख मुझको निश्चर देते हैं, दुख मुझको, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं दुख मुझको निश्चर देते हैं, दुख मुझको निश्चर देते हैं, भी सामग्री सारी ही वो नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, भी सामग्री सारी ही वो नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, मुनि
विश्वामित्र कहते हैं, राजन जिस समय मैं यज्ञ करता हूं तो राक्षस आकर के घी सामग्री को इधर उधर कर देते हैं, विध्वंस कर देते हैं, मेरे यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देते। तो मुनि विश्वामित्र की बात को सुनकर के महाराजा दशरथ खुश हो गए। अच्छा मुनिराज, अब मैं आपके भावों को समझ गया हूं, बताओ कितना घी चाहिए, कितनी सामग्री चाहिए, कितना सोना चांदी चाहिए। इस बात को सुनकर के मुनि विश्वामित्र कहते हैं, राजा क्या तुमसे मैं छोटी सी चीज मांगने के लिए आऊंगा? ये घी सामग्री सोना चांदी देने वाले दानी तो मुझे बहुत मिल जाएंगे, मैं तो तुमसे कुछ और मांगने आया हूं। और क्या मांगने आया हूं? मुनि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ को समझाया कि मुनिराज,
नहीं सोना चांदी नहीं सोना चांदी धरा धन धाम चाहता हूँ, यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ। नहीं सोना चांदी धरा धन धाम चाहता हूँ, यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ। मैंने जो है यज्ञ रचाया उसको पूरा नहीं कर पाया, मैंने जो है यज्ञ रचाया उसको पूरा नहीं कर पाया, मारी चो सुबाहु ने आकर के विघ्न मचाया, ले जाकर श्री राम ले जाकर श्री राम को संग्राम चाहता हूँ, यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ। नहीं सोना चांदी धरा धन धाम चाहता हूँ,
और मुनि विश्वामित्र कहते हैं, राजन एक दो दिन की बात होती तो बर्दाश्त कर लेगा, होता तो मेरे साथ में ये है,
सताते हैं निस दिन आतताई मांस खून की नदी बहाई, सताते हैं निस दिन आतताई मांस खून की बहाई, लाऊं किसी बहादुर को ये मेरे मन में आई, यज्ञ सफल हो जाए यज्ञ सफल हो जाए मेरा ये काम चाहता हूँ, यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ। नहीं सोना चांदी धरा धन धाम चाहता हूँ, यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ।
कहा कि मैं तो राम और लक्ष्मण को ले जाने के लिए आया हूँ, राक्षसों का वध करवाने के लिए। इन शब्दों को सुनकर के महाराजा दशरथ कुछ विचार में पड़ गए। थोड़ी देर विचार करने के बाद में कहते हैं, राजन आप भी क्या बच्चों जैसी बातें करते हो? मुनिराज मेरे राम और लक्ष्मण क्या यज्ञ की हवन की रक्षा कर सकेंगे राक्षसों का वध करके? नहीं, वो तो अभी बालक हैं। फिर भी मैं ये नहीं कहता कि यज्ञ की रक्षा नहीं होगी, यज्ञ की रक्षा अवश्य होगी। कैसे होगी? महाराज दशरथ पहले तो दुखी मन से यूं कहते हैं, मुनिराज वैसे तो चारों पुत्र ही मेरी आंखों के तारे हैं, वैसे तो चारों पुत्र ही मेरी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण तो मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं, मैं उनको नहीं छोड़ सकता, लेकिन यज्ञ की रक्षा अवश्य होगी। कैसे होगी? महाराजा दशरथ कहते हैं मुनि विश्वामित्र से, राजन
बालक है अभी तो लक्ष्मण राम हो, बालक है अभी तो लक्ष्मण राम हो ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूँ, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूँ। बालक है अभी तो लक्ष्मण राम हो, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूँ। गज दल रथ दल पैदल सेना लेकर चलूं साथ में, यज्ञ की रक्षा अवश्य होगी। मैं आपके साथ में चलूंगा, मेरी सारी सेना आपके साथ चलेगी, मैं राक्षसों का वध करूंगा। गज दल रथ दल पैदल सेना लेकर चलूं साथ में, राक्षसों के संग युद्ध में दिखलाऊं दो दो हाथ में। राम का वहां ना कोई काम हो, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूं, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूं। बालक है अभी तो लक्ष्मण राम हो, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूं। चौथे पन में पाए मैंने जो ये सुकुमार हैं, निराश होने के बाद आशा की किरण जगी है। बुढ़ापे में चार कुमारों को मैंने पाया है, मैं कैसे अपनी नजरों से दूर कर दूं। चौथे पन में पाए मैंने जो ये सुकुमार हैं, नजरों से दूर करना इनको दुश्वार है। राम तो है मेरा आराम हो, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूं, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूं। और आगे तो बड़ी सुंदर बात कही, मुनिराज तुम्हें पता है मेरे राम ने मेरे लक्ष्मण ने कभी दुख नहीं देखा, कभी दुख की छाया उन पे नहीं पड़ी है, वो तो गद्दों पर सोते हैं, वनों में कैसे रहेंगे। कोमल शरीर रहेंगे कैसे वन में, कोमल शरीर रहेंगे कैसे वन में, राक्षसों के संग लड़ेंगे कैसे रण में। जीतना कठिन है संग्राम हो, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूं, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूं। महाराजा दशरथ कहते हैं कि मैं राम और लक्ष्मण को नहीं भेज सकता, हां मैं चलूंगा, मेरी सारी सेना तुम्हारे साथ चलेगी, हम यज्ञ की रक्षा करेंगे। इन शब्दों को सुनकर के मुनि विश्वामित्र महाराजा दशरथ के चेहरे को देखते रह गए। वो मन ही मन विचार करते हैं और कहते हैं, महाराज तुम ज्ञानी होकर के अज्ञानियों वाली बात कर रहे हो। वैसे राम और लक्ष्मण बालक नहीं थे, वो तो सिंह के समान थे, गुरुकुल से पढ़कर के आ गए थे, विद्या प्राप्त थी, नौजवान थे, ब्रह्मचारी थे, हर कार्य करने में सक्षम थे, गुरुकुल से शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दोनों पढ़कर के आए थे। लेकिन महाराजा दशरथ ने एक भावना से जरूर कह दिया होगा, क्योंकि पिता पुत्र के प्रति बहुत प्यार दिखाते हैं, और पिता क्या मां क्या अपनी संतान को कोई कष्ट में भेजना चाहता है, नहीं चाहता। संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं सब में द्वेष हो सकता है, लेकिन पिता पुत्र में कभी द्वेष नहीं हो सकता। पुत्र कर सकता है लेकिन पिता कभी नहीं। भाई भाई को नहीं चाहेगा कि मुझसे ऊंचा उठ जाए, चाचा भतीजे को नहीं चाहेगा कि मुझसे ऊपर चला जाए, लेकिन पिता अगर सिपाही है तो अपने बेटे को दरोगा देखना चाहता है, वो देखकर के ही खुश होता है। और हां अगर किसी को गाली देनी हो तो तरीका हमसे सीख जाओ। वैसे हाथ जोड़ करके कहता हूं गाली देना बहुत बुरी बात है, लेकिन विचार करो, आप किसी से कहो आप तो बड़े नालायक हैं, बड़े निकम्मे हैं, हमेशा दूसरों को सताते रहते हो,
कभी किसी का भला नहीं चाहते, चोरी भी करते हो, डकैती भी डालते हो, दूसरों की जान भी लेते हो। जिस व्यक्ति को तुम ये शब्द कहोगे वो गुस्से में आता जाएगा और शायद आपको मारने को तैयार हो जाएगा, लेकिन बस एक शब्द कह देना बाद में, भाई तुम्हारा बेटा बहुत महान है, बस ये शब्द कहते ही सारा गुस्सा उसका बेकार हो जाएगा। आपने कितनी गालियां उसे दी, एक बेटे की बड़ाई करने के बाद में सब गालियां उसकी शांत हो गई। ऐसे ही पिता पुत्र के प्रति बड़े प्यार दिखाता है। इन प्यार की भावनाओं से ही महाराजा दशरथ ने कह दिया कि मुनिराज मेरे राम और लक्ष्मण बालक हैं। लेकिन मुनि विश्वामित्र जानते थे, बड़े दूरदर्शी थे,